ஓம் அஞ்ஞானத்மிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஶலாகயா சக்ஷுஹு உன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஃ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் ஸ்வாக்ரஜாதம் சஹகணரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ணச்சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் சஹகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகாந்விதாம்ச நமாவோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினி. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷூன்யவாதே பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நம. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானோசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ச க்ருபாசிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஃ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவத்யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஃ. நாரத உவாச புரஞ்சனஸ்வமஹிஷீம் நிரீக்ஷ்யாவதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யயௌ. புரஞ்சனஸ்வமஹிஷீம் நிரீக்ஷ்யாவதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யயௌ. நாரத உவாச புரஞ்சனஸ்வமஹிஷீம் நிரீக்ஷ்யாவதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யயௌ. புரஞ்சனம் ஸ்வமஹிஷீம் நிரீக்ஷ்ய வதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யயௌ. நாரத உவாச புரஞ்சனஸ்வமஹிஷீம் நிரீக்ஷாவதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யயௌ. நாரத உவாச்ச புரஞ்சனஸ்வ மகிஷேம் நிரீக்ஷாபது தாம் புவே தத்சங்கோன்மதி தஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் மாதே நாரத உவாச்ச புரஞ்சனஸ்வ மகிஷேம் நிரீக்ஷாவதுதாம் புவி தத்சங்கோன்மதிதஜ்ஞானோ வைக்லவ்யம் பரமம் யோ நாரத உவாச்ச. நாரத முனினே கஹா புரஞ்சனஹ ராஜா புரஞ்சன் ஸ்வமஹிஷீம் அப்னி ராணி கோ நிரீக்ஷ்ய தேக் கர் அவதுதாம் சாது கி தரஹ புவி பிருத்வி பர் தத் உஸ்கே சங்க சாத் சே உன்மதித ப்ரோத்சாஹித ஞானஹ ஜிஸ்கா ஜ்ஞான் வைக்லவ்யம் மோஹக்ரஸ்த பரமம் பரம் யயவ் ஹோகயா. அனுவாத ஒரு தாத்பரிய கிருஷ்ண கிருபாமூர்த்தி ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு துவாரா ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு. மகர்ஷி நாரதனே கஹா ஹே ராஜா பிராச்சினபர்ஹி ஜெய்சிஹி ராஜா புரஞ்சன்னே அப்னி ராணி கோ அவதூத் கி பாந்தி பிருத்திவபர் லேட்டே தேகா வஹ துரந்த் மோஹக்ரஸ்த ஹோகயா. தாத்பரிய இஸ் ஸ்லோக் கா அவதுதாம் ஷப்த மகத்வபூர்ண ஹை க்யோங்கி யஹ உஸ் சாது கே லியே பிரயுக்த ஹோதா ஹை ஜிசே அப்னே ஷரீர் கி சுதி புத்தி நஹீ ரஹதி. சூங்கி ராணி பினா பிஸ்தர் கே அஸ்த வியஸ்த வஸ்திரம் சஹித் ஜமீன் பர் லேட்டி தி இஸ்லியே ராஜா புரஞ்சன் அத்யதிக் துக்கி ஹுவா. தூசரே ஷப்தோ மே உசே இஸ்கா பஷ்சாத்தாப் ஹுவா கி உஸ்னே அப்னி புத்தி கி உபேக்ஷா கி ஹை அவர் ஸ்வயம் ஜங்கல் ஜாகர் பசுவத் மே வியஸ்த ரஹா ஹை. தாத்பரிய யஹ கி ஜப் மனுஷ்ய அப்னி புத்தி கி உபேக்ஷா கர்த்தா ஹை யா உஸ்ஸே விலக ஹோ ஜாதா ஹை தோ வஹ பாப் கர்ம மே பிரவிருத்த ஹோதா ஹை. அப்னி சத் புத்தி யா கிருஷ்ண சேத்தனா கி உபேக்ஷா கே காரண வஹ மோஹக்ரஸ்த ஹோதா ஹை ஔர் பாப கர்ம மே லக ஜாதா ஹை. ஜப் இஸ்கா எஹ்சாஸ் ஹோதா ஹை தோ வஹ பச்சாதாப் கர்த்தா ஹை. ஐசே பச்சாத்தாப் கா வர்ணன் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் நே கியா ஹை. ஹரி ஹரி விஃபலே ஜனம் கவாயினூ மனுஷ்யா ஜனமா பாயா ராதா கிருஷ்ணனா பஜியா ஜானியா சுனியா விஷ காயினூ. வே கஹதே ஹை கி முஜே அப்னா மனுஷ்ய ஜன்ம பர்பாத் கர்னே ததா ஜான் பூஜ் கர் விஷ பீனே கா பச்சதாவா ஹை. கிருஷ்ண பக்த நா பன் கர் மனுஷ்ய ஜான் பூஜ் கர் பௌதிக் ஜீவன் கா விஷ்பான் கர்த்தா ஹை. சாராம்ஷ் யஹ ஹை கி அப்னி சதி சாத்வி பத்னி கே அபாவ் மே யா யஹ கஹே கி ஜப் வஹ அப்னி புத்தி கோ தேதா ஹை அவுர் கிருஷ்ண பக்தி நஹி கர்த்தா तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है. हम पढ़ रहे हैं राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना. श्री नारद मुनि ये प्राचीन बरिषद राजा को புரஞ்சன் கி கஹானி பத்தா ரஹே ஹை. உஸ் கதா மே ஆஜ் ஏக் மஹத்வபூர்ண சீக் ஹம் லோக் சீக் ரஹே ஹை. க்யா ஹை புரஞ்சன் கி பத்னி ஜோதி வோ க்யா சம்போதித் கர்தா ஹை. புரஞ்சன் ஆத்மா ஹை ஔர் உஸ்கி பத்னி ஜோ ஹை புத்தி ஹை ஔர் வோ ஜோ ஸ்திரீ உஸ்கே பத்னி கே ரூப் மே ஆதி ஹை. ஜைசே ஹம் படதே ஹை கி ஜப் வோ ஸ்திரீ ஆகர் பஹஞ்சி புரஞ்சன் கே பாஸ் உஸ்கே சர் கே ஊபர் ஏக ஐசே படா சர்ப தா வோ சர்ப ஹமாரே பிராண. தோ प्राण जो होता है वो हमारे कर्मेंद्रिय जो होते हैं, हाथ पैर और जननेन्द्रिय गुदा इत्यादि को, और हमारे बोलना, इसके लिए शक्ति देता है। और बुद्धि जो है वो हमारे ज्ञानेन्द्रियों को शक्ति देता है, वो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है वो। तो आप पढ़ेंगे, इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि उस स्त्री के साथ वो सर्प जो था वो प्राण था, सात दस सेवक थे उसके साथ, नौकर चाकर थे। वो कौन है? दस इंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय। और उसके बाद उनके पास 365 गंधर्व और गंधर्वियां आती उनके साथ, वो मालूम है कौन, और दिन और रात 365 दिन 365 रात वो भी उनके साथ जा रहे थे। तो पुरंजन ने जब उनको देखा, पहले उनको पूछताछ करता है, उनको उनके साथ बातचीत होता है, उनसे मोहित होता है, आकर्षित होता है। इसका मतलब क्या है? आत्मा जब इस दुनिया में आता है उसके लिए बुद्धि साथ में दिया जाता है, जो उसके लिए बड़ा मित्र है। आत्मा का बड़ा मित्र कौन है? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि को लेकर ही हम लोग मन और इंद्रियों को वशीभूत कर सकते हैं, वश में ला सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय जो है वो बच्चे के बराबर हमेशा इस दुनिया के क्षणभंगुर छोटे मोटे चीजों के पीछे भागते हैं इंद्रिय। और इंद्रिय मन को विविध तरह के विषयों के संबंध में संदेश देते हैं और हट करते हैं इंद्रिय भोग करने के लिए। मन भी धीरे धीरे ऐसे ही दूषित हो जाता है विविध पदार्थों को भोगने के लिए इस दुनिया में। लेकिन मन और इंद्रियों को, मन दूषित है, इंद्रिय विचलित है, इसको अगर संयम में लाना हो तो बुद्धि की जरूरत है। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा ही, सद्बुद्धि जो होता है उसके द्वारा ही एक इंसान इस दुनिया में अपने मन और इंद्रियों को संयम करके भगवत भक्ति में लगाकर आगे बढ़ सकता है, उन्नति हो सकता है, प्रगति हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है वो। तो इस उदाहरण में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक परिवार में पति पत्नी जो होते हैं, अगर एक पत्नी धार्मिक होती है, अगर उसको स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति, पूजा आराधना, इस तरह दिव्य स्थलों में भ्रमण करना, पति के साथ घर को भी एक मंदिर जैसे बनाकर रखना, इस तरह अगर एक स्त्री के प्रवृत्ति हो तो वो पति बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। ऐसे देखा जाता है, भारत में भी आपने देखा होगा, पति जो होता है वो नौकरी करने में, काम धंधे करने में, बिजनेस बढ़ाने में व्यस्त हो जाता है, पैसा कमाने में। कभी कभी इतना व्यस्त हो जाता है, दिन रात काम करता है, रात को आते आते बहुत देरी हो जाता है उसको। तो पैसे के पीछे पड़ने के कारण वो थक भी जाता है, साथ साथ कभी गलत संग में भी फंस जाता है वो। उसके मित्र लोग उसको लेके जाकर शराब पिला देते हैं, कुछ बुरे व्यसन वचनों को सिखा देते हैं, जिसके कारण वो पति कभी बिगड़ भी जाता है, इसे देखा जाता है। लेकिन ऐसे एक पुरुष को एक साध्वी, एक अच्छे पत्नी मिल जाए उसको, तो पत्नी घर को साफ सुथरा रखती है, भगवान की पूजा आराधना करती है, व्रत इत्यादि करती है, शांति से बैठकर गीता भागवत पढ़ती है, और बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण करके उनको संस्कार देकर बड़ा करती है, और पति के सामने भी बहुत नम्र रहती है। तो ऐसे पत्नी देखा गया है भारत में, अनेक लोग आपने देखा होगा ऐसे, जिसके कारण पति को भी बड़ा लाभ होता है, क्योंकि पत्नी उसके एक अच्छा सहायक बनती है। तो पत्नी के प्रेम को पाकर पति भी धार्मिक बनने के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी बोलते आइए अभी हम चार धाम यात्रा करते हैं, तो पत्नी के साथ वो भी जाता है यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए मन नहीं है, पत्नी बोल रही है करके जाता है। अगर पत्नी मंदिर में बुलाती है तो जाता है। तो हमारे पुणे में भी देखा गया है, पहले जानव माता जी भक्ति में जुड़ गई, उसके बाद सत्यवती माता जी, राधिका माता जी, इनको जोड़ा उन्होंने भक्ति में। उसके बाद इस तरह आप देखेंगे धीरे धीरे पवित्र मंजरी माता जी, ऐसे अनेक लोग भक्ति में जुड़े। तो पहले माताएं भक्ति में जुड़ गई, उसके बाद पति को भी लाया, उन्होंने लाइन में लाया। उसके बाद दिन में वो लोग 11 से 1 बजे तक उनका माताओं का कार्यक्रम होता है, जिसमें 70-80 माताएं आ जाती है उसमें। तो माताजियों के द्वारा कार्यक्रम होता है। वो घर में घर को कैसे रखना है, संस्कार क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, गीता भागवत पढ़कर कैसे समझना चाहिए, सब सिखाया जाता है उनको। तो कोई सोचेगा कि अरे माताएं ही भक्ति बनती जा रही हैं, पति क्या होगा? तो पति धीरे धीरे आ जाता है, वो भी लाइन में आ जाता है। उसके बाद ऐसे हमारे पूरा कम्युनिटी बढ़ गया, क्योंकि पत्नी से प्रेरणा लेकर पति लोग आगे बढ़े हैं। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जिस तरह एक परिवार में पति पत्नी के जुड़कर धार्मिक कार्य करने से दोनों को लाभ होता है। तो मंडोदरी ज्योति रावण के धर्मपत्नी ऐसे ही थी। वो मंडोदरी को अच्छी तरह मालूम था कि रावण जो कर रहा था वो गलत काम है, क्योंकि वो पर स्त्रियों से आकर्षित होकर इस दुनिया के कोने कोने में जाकर वो अलग अलग स्त्रियों को लेके आता था। वो मंडोदरी बड़े साध्वी भी थी, पतिव्रता नारी थी। उन्होंने बहुत उपदेश दिया रावण को, रावण भी सर हिलाता था लेकिन कभी किया नहीं, उनकी बात माना नहीं, इसलिए अधोगति हुआ उसको, रावण को ऐसे। तो हालांकि रावण में अनेक त्रुटियां थी, रावण के अंदर अनेक दुर्व्यवहार थी, फिर भी मंडोदरी एक पतिव्रता नारी रही। इस तरह आप सुनेंगे गांधारी भी धृतराष्ट्र की पत्नी जो बनी, उनको जब पता चला कि मैं ऐसे पति से शादी करने वाली हूँ जो अंधा है, खुद भी अपने आंख को बांध लिया उन्होंने। बोला कि अगर मुझे आंख होगा, उनको आंख नहीं होंगे, तो मैं गर्वित हो जाऊंगी और गर्वित अवस्था में पति को मैं अपराध करूंगी, इसलिए मैं उनके स्तर जैसे ही मैं भी अंधा बनकर रहूंगी करके उन्होंने ऐसे अपने आंख को बांध लिया ऐसे। इसलिए गांधारी की पतिव्रतता के कारण उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुआ उसके कारण। और गांधारी को भी सही ढंग से मालूम था कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये सब जो कर रहे हैं वो गलत है। अनेक बार उन्होंने उपदेश दिया लेकिन ये लोगों ने सुना नहीं। इस दो उदाहरण से हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई जीवात्मा इस दुनिया में आते समय उसके साथ बुद्धि को भी लेके आता है वो, लेकिन सद्बुद्धि जो है उसका उसका इस्तेमाल होना चाहिए, सही बुद्धि का काम आना चाहिए एक जीव को। अगर हम लोग सद्बुद्धि को पकड़ कर चलेंगे, आप देखेंगे कि हम जल्दी उठना चाहिए, सुबह नहा धोकर भगवान के सामने आना चाहिए, भगवान के समक्ष दंडवत करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, गीता भगवत पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, प्रसादी पाना चाहिए, कुसंग से दूर रहना चाहिए, ये दुनिया क्षणभंगुर है, ये शरीर मर मिटने वाली पदार्थ है, आत्मा अजर है अमर है, इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस तरह हम लोग सब सद्बुद्धि को लेकर इस्तेमाल करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं किया हमने, तो हम क्या होता है, उसके प्रयोग ना करने के कारण हम बिगड़ जाते हैं इस दुनिया में, जैसे रावण बिगड़ गया, धृतराष्ट्र बिगड़ गए ऐसे। तो इधर क्या देखा जा रहा है, पुरंजन अपनी पत्नी को महल में छोड़कर वो जंगल में गया था शिकार करने के लिए ऐसे। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनके तात्पर्य में बताया है, शिकार का मतलब क्या है, सिर्फ जानवर का शिकार नहीं है, दूसरे स्त्रियों का शिकार करना, ऐसे बताया है उन्होंने, अवैध संघ ऐसे उसका तात्पर्य दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अगर एक व्यक्ति अपने पत्नी को त्याग कर परस्त्री का गमन करता है, परस्त्री के पीछे भागता हो, वो अधोगति को प्राप्त करता हो, उससे क्या होता है, इनका पत्नी जो है पुरंजन का पत्नी घर में जमीन में लेटे रहती है और उनका बाल बिखरा गया है, उनके उनको सजाया नहीं है खुद को और रो रही है, दुखित हो गई है, ऐसे अवस्था में वो पाता है अपने पत्नी को। इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई पुरुष अपने स्त्री के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परस्त्री के पीछे भागता है, तो उसके साध्वी जो धर्म पत्नी होती है वो दुखित हो जाती है। तो इस तरह पुरंजन को ऐसे एक जीव से संबोधित किया गया है जो अपने सुबुद्धि को छोड़कर वो आत्मा के कल्याण के लिए काम ना करते हुए आत्मा की इच्छा के विरुद्ध काम करता है वो, इसको आत्महा शब्द से इस्तेमाल किया है शास्त्रों में। हृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नभस्वतेरितम उमान बबाब्धीम नतरेत्स आत्महा। उधर आता है शब्द आत्महा, एके चात्महनो जनाहा, ऐसे ईशोपनिषद में भी आता है। आत्महा का मतलब क्या है? आत्मा को घातक करने वाला, आत्मा को बाधा पहुंचाने वाला। कोई आत्मा को मार सकता है क्या? कोई आत्मा तो मरता नहीं कभी, आत्मा अजर है अमर है। लेकिन हा का मतलब है मारना, इसका मतलब क्या है? एक कुल्हाड़ी को लेकर कुत्ते के ही पांव में मारना है? कितना मूर्खता होगा। अगर कुल्हाड़ी लेकर कुछ पेड़ को काटना है तो काटकर आप लकड़ी ला सकते हो, लेकिन अगर कोई एक कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पांव में मारेगा वो कितना बड़ा मूर्ख होगा वो, है ना। इस तरह जो लोग आत्मा के कल्याण न करते हुए आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे सिगरेट फूकना, पुणे में इतना पोल्यूशन है, ये लोग पोल्यूशन का अंतर ले रहे हैं सिगरेट के द्वारा, बाहर की पोल्यूशन कम इनको कम पड़ रहा है, उनको और चाहिए। ऐसे इस तरह शराब पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, ऐसे गोहत्या करते हैं, बकरी बकरियों की चिकन की ये सब काटते हैं। तो इस तरह आत्मा के कल्याण के विरुद्ध जो काम करता है उसको आत्महा बोला गया। ये श्लोक जो बोला मैंने अभी, उसमें क्या बताया गया है? हृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये नर देह जो है, जो प्राप्त हुआ है मनुष्य देह, वो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि अनेक चौरासी लाखों में घूमने वाला जीव होता है, उसको किसी भी शरीर में उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है, सिवाय मनुष्य जन्म को छोड़कर। सिर्फ मनुष्य जन्म में उसको ये समझ में आ सकता है ये सब चीज। लेकिन बता रहे हैं कि प्लवम सुकल्पम, हमारे मनुष्य देह को एक प्लव का मतलब है एक नाव से तुलना किया है, और उस नाव को चलाने वाले कौन है? गुरु जी है, प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे नाव का कैप्टन है, वो चला रहे हैं। और जो हवा बह रहा है वो शास्त्र है। शास्त्र क्या करता है? शास्त्र और गुरु हमको एक ही दिशा में लेके जा रहे हैं, जो समुद्र के किनारे में, समुद्र के किनारा क्या है? भगवत धाम है। उधर खड़े हैं कृष्णा और गोपाल, गोपियां, गाय बछड़े सब वो किनारे में हैं। जब हम पहुंच जाएंगे वो किनारे, तो हमको स्वागत करेंगे, लेके जाएंगे, पुनः हमें वापस संसार सागर में आना ही नहीं है। लेकिन जब हम उस दिशा में जा रहे हैं, गुरु लेके जा रहे हैं, शांति से नाव में बैठे रहना चाहिए हमको, कुछ नहीं करना, कूदना नहीं चाहिए पानी के अंदर वापस। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं खुद ही तैर कर आ जाऊंगा करके कोई कूद जाएगा, तो उसको तिमिंगल का डालेंगे उसको। तिमिंगल है, मगरमच्छी है, बड़े बड़े प्राणियां हैं समुद्र में, जलचर है इस तरह। तो ये संसार क्यों समुद्र से तुलना किया है, इसका एकदम अच्छा मतलब इसका, क्योंकि संसार देखिए, ये पानी जो है किधर शुरू होता है किधर अंत होता है कोई माप नहीं लगा पाता। इस तरह हमारा जन्म कब चालू हुआ, कितने जन्म हम लोग जन्म मृत्यु चक्र काटते रहेंगे पता नहीं हमको, इसलिए उसको सागर से तुलना किया है। दूसरा कारण है, सागर में बड़े बड़े लहरें उठते हैं जो हमको मारते हैं। इस तरह ये संसार सागर में भी तीन गुण उठते हैं, तीन गुण उठकर रजोगुण तमोगुण खास करके हमको बार बार पिटाई करते हैं वो ऐसे। और संसार सागर में, जैसे सागर में बड़े तिमिंगल होते हैं, शार्क को क्या बोलते हैं? शार्क जानते हैं आप लोग? शार्क है, ऐसे बड़े बड़े मछलियां होते हैं जो पूरे इंसान को खा लेते हैं, वो निगल लेते हैं इसे। इस तरह ये संसार में भी हम देखते हैं काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर्य इत्यादि विकार हैं, वासनाएं हैं, जो इंसान को निगल लेता है इस दुनिया में ऐसे। और साथ साथ आप देखते हैं कि इस संसार में, सागर में अगर कोई तैराक भी गिर जाए, कितना दूर तैर पाएगा वो? एक दो घंटे के बाद थक जाएगा वो। इस तरह जितने भी बड़े ज्ञानी भी हो, योगी भी हो, बड़े निपुण भी डूब जाते हैं संसार में, देखा जाता है इसे। अगर कोई भगवान की भक्ति प्राप्ति करके, जैसे आपने एक तस्वीर देखा होगा, एक भक्त दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकार रहा है, और भगवान विष्णु या गरुड़ के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं उसको उठाने के लिए, वही एकमात्र मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जिसमें अगर भक्तों को उठा लिया विष्णु, अपने साथ बिठा लिया गरुड़ में और वैकुंठ लेके गए, बस बच गया हो। नहीं तो ये संसार सागर ऐसा सागर है ऐसे बताया गया है। और एक कारण है सागर क्यों बोला गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, और क्या है वो पानी पानी सब जगह में लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं उधर, क्या है वो समुद्र है। इस तरह इस दुनिया में देखा जाता है कि अनेक तरह के इंद्रिय तृप्ति है लेकिन वो प्राप्त करने से हम हताश हो जाते हैं, तकलीफ ही प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। इस दुनिया में इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने वाले जीव को कल्याण नहीं है, वो दुख ही दुख प्राप्त करता है वो, इसलिए समुद्र के साथ तुलना किया है। तो शास्त्र जो तुलना देते हैं क्यों संसार को एक सागर से तुलना किया गया है, अगर ऐसे सागर में भी एक नाव प्राप्त हो जाए जैसे हमारा मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और मानव शरीर में अनेक अच्छे अच्छे सुविधा है, जैसे हम लोग मस्तिष्क है, बुद्धि है जिससे हम लोग शास्त्र समझ पाएंगे, जिह्वा है जिसको लेकर हम हरिनाम का उच्चारण कर पाएंगे मनुष्य योनि में, तो इस तरह ये नाव में बैठने से थोड़ा शांति है समुद्र में तैरने वाले व्यक्ति को, लेकिन उसको गुरु का आधार लेकर शास्त्रों का आधार लेकर पहुंच जाना चाहिए, भगवत नाम लौट जाना चाहिए। तो धर्म पत्नी को साथ में लेकर अगर कोई पति धार्मिक कार्यों में जुड़ता हो बड़ा भाग्यशाली है, खुद को भी भाग्य है उसको और पत्नी को भी भाग्य है। इस तरह जीव अपने बुद्धि को लेकर शास्त्र पढ़ता है तो वो बुद्धि जो है सद्बुद्धि और भी मजबूत बनता जाता है उसका, जितना दिव्य ज्ञान जग जाएगा एक जीव के हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति यह होते अविद्या विनाश जाते हैं, प्रेम भक्ति जब जगता है अविद्या नष्ट हो जाता है, रोशनी छा जाता है उसके चित्त में और उसको सही ढंग से सब दिखाई देता है दुनिया में, शास्त्र चक्षु प्राप्त हो जाता है उसको ऐसे जीव को। लेकिन इसके एकदम विरुद्ध है कुबुद्धि, कुबुद्धि कैसे प्राप्त होता है, कुछ कुछ पत्नी ऐसे होते हैं जो घर को साफ सुथरा नहीं रखती, शास्त्र नहीं पढ़ती, सुबह जल्दी नहीं उठती, पूजा रूम को साफ सफाई नहीं करती, सुबह उठते ही टेलीविजन ऑन कर देती है, टेलीविजन देखती है, सुबह भी देखती है शाम को भी देखती है, वो अपने ही स्वार्थ होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सेंट पहनना, मार्केट में घूमना और पतिव्रता ना होकर अलग अलग पुरुषों से संबंध जोड़ना, इस तरह करने वाली बुद्धि होती है, पुंश्चली नाम से पुकारते हैं कि वो जो बुद्धि कभी कुबुद्धि हो जाती है। क्यों बुद्धि कुबुद्धि होती है, क्योंकि कभी कभी बुद्धि शास्त्र ना पढ़कर बुद्धि क्या करती है, वो मन और इंद्रियों की बात सुनती है, मन तो दूषित है इंद्रिय विचलित है, उनकी बात सुनने से बुद्धि भी बिगड़ जाती है, ऐसे ऐसे बताया गया। जैसे कैकेयी, कैकेयी ज्योति वो पहले एकदम निर्मल था उसका हृदय, लेकिन बाद में उसका बुद्धि बिगड़ गया, किसका बात सुनकर, मंत्र का बात सुनकर, मंत्र नहीं जब संदेश लाए थी मंत्र, एक कैकेयी देखा नहीं, ऊपर से दिखा रहे थे नीचे देखो इतना भीड़ भाड़ छा गया है, लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं, कल रामचंद्र जी का अभिषेक है, पटाभिषेक है, तुमको मालूम है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा। उस बात को सुनकर कैकेयी इतना खुश हो गई, तुरंत अपना नेकलेस निकालकर मंत्रा को बोले, हे मंत्रा इतना अच्छा गुड न्यूज लाया तुमने, ले लो, उसको पहनाने के लिए गई। तो मंत्रा और नेकलेस को लेकर फेंक दिया उन्होंने, बोला कि अरे मूर्ख तुमको अकल नहीं क्या, अगर राम राजा बनेगा तो तुम्हारे बेटा का क्या होगा। तो कैकेयी ने बोला मेरा बेटा का क्या हो, मेरा बेटा को तो राम अच्छा रखता है हमेशा, इतना प्रेम करता है मेरे बेटे से, तो मैं तो मेरे बेटे से भी ज्यादा राम को प्रेम करती हूँ। ये आश्चर्य की बात है, कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम को और कौशल्या बहुत प्रेम करती थी भरत को, तो वो तीनों रानियों में इतना अन्योन्यता थी कि वो सब बेटों को प्रेम करते थे वो ऐसे। तो तब मंत्रा ने सोचा कि इसको कैसे मेरे लाइन में लाया जाए, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ईर्ष्या पैदा किया उनमें, कैसे, उन्होंने बोला कि देखो तुमको मालूम नहीं, जब राम राजा बन जाएगा उसके माता जो है कौशल्या वो दशरथ के लिए बहुत प्रिय बन जाएगी, इसके कारण तुमको दासी के रूप में भी वो मानेंगे नहीं, दासी के दासी बन जाओगी तुम। तुमको मुड़कर राजा कभी देखेगा भी नहीं। हा? तो ये बात सुनकर कैकेयी के हृदय कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गया है। तो कैकेयी ने बोला ऐसा है क्या, ये मैंने तो कैकेयी कभी सोचा ही नहीं। तब मंत्रायणी ने बोला ये तुमको समझ में नहीं आ रहा, यही मैं बोल रही हूँ। तो कैकेयी ने पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए कैकेयी ने अपने हृदय को देकर बहुत विश्वास के साथ मंत्रा का बात सुना, ये गलत है। हम लोग अपने बुद्धि को लेकर सांसारिक लोगों की बात सुनेंगे ध्यान से, हम बिगड़ जाएंगे। आजकल के जमाने में कितने साइंटिस्ट लोग नास्तिक लोग हैं, सारे लोगों को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि ये पेड़ पौधों में जान है। वो लोग हजारों सालों से बोलते आए हैं साइंटिस्ट लोग पेड़ पौधे जिंदा नहीं है। कारण क्या है, वो चलते नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। शास्त्र बोल रहे हैं कि चर अचर दोनों नाम इस्तेमाल किया है शास्त्र में। चर का मतलब चलने वाले जिंदा जीव हैं और अचर का मतलब पेड़ पौधे हैं। तो हमारे पुराणों में करोड़ों सालों के पहले बोला गया कि पेड़ पौधे में जिंदा जान है। लेकिन अभी अभी 50-60 साल के पहले एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये बात की निरूपण की कि पेड़ पौधे में वो भी जिंदा है, उनमें भी आत्मा है। बाद में साइंटिस्ट लोग बोला हाँ हाँ हम मानते हैं, अभी समझ में आ गया हमको, अभी अकल आ गया हमको। उनको इतने सालों के बाद अकल आया उनको। सर आप देखेंगे भारत के लोग जब योगासना वगैरह करते थे, अनेक वैज्ञानिक लोग उनका मजाक उड़ाते थे उन दिनों में, ये क्या है हाथ पैर हिलाना योगा करना है ऐसे। लेकिन आजकल योगा इतना जगत प्रसिद्ध हो गया है, सारे दुनिया भर के लोग प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, भारत के लोग जाकर सिखा रहे हैं सारे दुनिया में जाकर, सारे दुनिया के लोग, गल्फ के लोग भी भारत से बुला रहे हैं लोगों को, हमको भी सिखाओ योगासन, वो भी कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, आप देखेंगे कि नास्तिक वैज्ञानिक लोग लोगों के बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं कुबुद्धि प्रदान करके। तो इस तरह इस दुनिया में जैसे कैकेयी के बुद्धि सद्बुद्धि कुबुद्धि हो गया, क्यों, उन्होंने संग किया मंत्रा की। तो मंत्रा के मंत्रा को ध्यान पूर्वक सुना उन्होंने। तब मंत्रा उन्होंने पूछा मंत्रा को, मंत्रा तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अगर राम राजा बनने जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। मंत्रा ने बोला देखो ध्यान से सुनो, मैं जो बोलूंगी ना उसको ऐसे ही करने का है। तो बोला कि तुम जब मान में चली जाती हो, उधर एक महल होता था, वो महल किस लिए, जब रानियां कुछ मान में, मान का मतलब क्रोध में चली जाती थी तो वो महल में चली जाती थी, तो राजा ढूंढता था किधर मेरे रानी, अगर नहीं मिल रही उधर चला गई, चली गई तो उसको उधर जाकर थोड़ा उसको समझा कर शांतावना करके उसको कुछ पुरस्कार भेंट वगैरह अर्पण करके लाता था वो। तो उन दिनों में राजा लोगों का इतना धन संपत्ति था, क्रोध करने के लिए भी एक महल था अलग, उसके लिए अलग महल, भोग के लिए अलग महल, क्रोध के लिए दूसरा महल। तो वो महल में पहुंच गई वो। तो मंत्रा ने जो भी बोला ऐसे ही किया, उन्होंने पूरा बाल बिखर दिया और सजाया नहीं था कुछ आभूषण, सब आभूषण निकाल दिया उन्होंने, ठीक कर एक भी नहीं पहने था, सब फेंक दिया उन्होंने। और ऐसे रो रही थी और नीचे गिर पड़ी, नीचे लेटी थी ऐसे। जब दशरथ राजा को पता चला, उधर जाकर देखा, अभी जो थी ये पुरंजन की धर्मपत्नी ऐसे ही, वो भी लेटी थी ऐसे ही। लेकिन ये पुरंजन की पत्नी और कैकेयी, इन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है, ये पुरंजन ने अपने पत्नी को ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो दुखित हो गई, दुखित होकर ऐसे लेटी थी वो। लेकिन कैकेयी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया दशरथ ने, दशरथ ने तीनों रानियों में दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता था, कैकेयी को करता था। लेकिन वो कुबुद्धि लेटी थी, ये सुबुद्धि लेटी है इधर, ये कौन है, पुरंजन की पत्नी सुबुद्धि है, लेकिन कैकेयी कुबुद्धि वाली हो गई। इस तरह वो नाटक कर रही है लेटकर, ये नाटक नहीं कर रही है पुरंजन की पत्नी जो है, क्योंकि हम सुबुद्धि के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो उसके कारण बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है, आत्मा का कल्याण नहीं प्राप्त होता है, मैंने बोला आपको ऐसे। तो उधर कैकेयी ऐसे लेटी थी और उसके बाद उन्होंने क्या वरदान मांगा आप लोग जानते हो ऐसे। तो हम लोग जानना चाहिए, फर्क जानना चाहिए सुबुद्धि और कुबुद्धि के बीच में फर्क है। तो इसी को लेकर हम रामायण के एक प्रसंग सुनेंगे। जब रावण ने देखा कि हनुमान लंका में आकर इतना हलचल मचा दिया उसने अशोक वाटिका में, बाद में सारे लंका के महलों में आग जला दिया उसने, कितने राक्षसों को मार डाला उसने, और सभा में भी आकर जब रावण की सभा में आया था रावण ने उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया। तो हनुमान ने सोचा कि तुम कुर्सी नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ा हमको, अपने पूंछ को लेकर ऐसे 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 डालकर वो रावण इधर नीचे बैठा था ऊपर बैठे थे, रावण का ऐसे देखना पड़ा उसको है? इतने बड़े कुर्सी खुद का कुर्सी बना लिया उन्होंने अपने पूंछ से। तो रावण ने सोचा अरे देखो ये बंदर जो है वानर जो है इसका अपने पूंछ के ऊपर बड़ा गर्व है, इतना लंबा कर सकता अपने पूंछ को, तो आग जला दिया था उसने, लेकिन उसके बाद भी सारे लंका में लगा दिया उन्होंने आग। तो ये सब देखकर थोड़ा चिंतित था रावण, तो अपने सब मंत्रियों को बुलाया उसने। अरे मंत्रीगणों शास्त्र बताते हैं, वो बोला शास्त्र के बारे में, वो क्या बोला, शास्त्र बताते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी पुरुष को विजय प्राप्त होता है, उसका विजय अच्छे उपदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है। द रूट ऑफ सक्सेस इज गुड काउंसिल। उन्होंने बोला कि कोई भी इस दुनिया में विजय प्राप्त करते हैं उनको उपदेश देने वाला कोई होना चाहिए। शिवाजी महाराज के लिए कौन थे, समर्थ रामदास थे, तुकाराम थे, ऐसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे, ऐसे दशरथ के लिए भी वशिष्ठ थे, रामचंद्र जी को विश्वामित्र थे। अब देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो विजय प्राप्त करता है उसके विजय के पीछे रहस्य क्या है, उसके लिए कोई सदुपदेश देने वाला कोई होना चाहिए। तो रावण ने बोला उनको अच्छा उपदेश मिलना चाहिए, अच्छा मार्ग मिलना चाहिए। अगर किसी को दिशा मिल गया, दिशा मिलने के बाद पूरा जान लगाकर उस दिशा में भाग सकता है कोई व्यक्ति, तब उसको विजय प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ उसको ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं यत्न करूंगा और मुझे विजय प्रदान करना ईश्वर का काम है। तीन चीज बोला उन्होंने, अच्छा उपदेश और ईश्वर की कृपा और साथ में हमारे प्रयत्न, तीनों करना चाहिए। ये जो करता है वो बुद्धिमान है, ऐसे बोला। लेकिन अगर कोई उतना बुद्धिमान नहीं हो वो क्या करेगा, दूसरे मित्रों की वरिष्ठों की बात नहीं सुनेगा, वो खुद का ही बुद्धि इस्तेमाल करके वो ढूंढ निकालेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं उसने बोला। और वो भी मानता है कि ठीक है कुछ सब नियंत्रण भगवान के हाथ में है, लेकिन खुद का बुद्धि लगाता है वो उतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि जो वरिष्ठों को अपने मित्रों का सुझाव लेता है वो और ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन दूसरे श्रेणी के आदमी है क्या करता है, खुद का ही बुद्धि लगाता है। तीसरा श्रेणी का बोला उसने, वो हितकारक क्या है, हानिकारक क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है सोचता ही नहीं, वो भगवान को भी मानता नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या करता है, मनमानी करता है और क्रोधावेश में आकर गलत दिशा में तेजी से भागता है वो। इस तरह बोलकर रावण ने बोला, इसलिए मंत्रियों मैं खुद कुछ निर्णय नहीं लेना चाहता, आप लोगों को बुलाया हो मैंने, आप लोग मुझे सुझाव दो हमें क्या करना चाहिए। अभी इस बंदर हनुमान की कार्य देखकर बहुत हम लोग चिंतित हैं, क्या कर दिया इसने, इतना बड़ा शक्ति है इसके अंदर और इसको भेजा है किसने, रामचंद्र ने भेजा है, तो आप लोगों का सोचना क्या है। तो सब बंदर सब मंत्रियां उन्होंने सोचा कि उनको मालूम था कि रावण की इच्छा क्या है, सीता को रखना चाहिए उधर, सीता के साथ भोगना चाहिए, अगर हम उसके विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो हमारा पोस्ट निकल जाएगा, हमको निकाल देगा, बोलता है उपदेश चाहिए लेकिन सुनने वाला आदमी नहीं है ये। कुछ लोग हैं आपको बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा फीडबैक दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, इतना तांडव करेंगे वो, ऐसा कैसा फीडबैक दे दिया आपको, क्या मालूम हमारे बारे में, बैठ बैठ कर सुनिए, दो घंटा हम समझ आएंगे कि हम सही हैं आप गलत हैं, ऐसे बोलेंगे कुछ लोग हैं। इसलिए वो लोग समझ गए कि ये सुनने वाला आदमी नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छा है कि इसका चापलूसी करना चाहिए, हम इसके सुर से सुर मिलाएंगे, हम इसकी इच्छा है कि सीता को रखो राम के साथ लड़ाई करो। इसलिए उन्होंने क्या बोला, एक एक करके सामने आकर उन्होंने बोला, प्रहस्त जो उनका मंत्री था उसने बोला, देखिए जी आपने आपके भाई कुबेर को पराजित करके लंका को छीन लिया आपने, उनसे उनके पुष्प विमान को भी छीन लिया, आप कितने शक्तिशाली हैं, आपको तो छोड़िए, आपका बेटा इंद्रजीत इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसने इंद्र को एक बार गिरफ्तार कर लिया, ब्रह्मा को खुद ही आकर याचना करना पड़ा उनको प्रार्थना करके उन्होंने इंद्र को मुंह मुक्त करके लेके गए वो ब्रह्मा जी। इतना शक्तिशाली था कौन? आपका ही बेटा इंद्रजीत। इसलिए आप इसी चरण में आराम कीजिए, आपका बेटा खत्म कर देगा राम और लक्ष्मण और बाकी सब वानरों को, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको इतने आप शक्तिशाली हैं आप, ऐसे उन्होंने बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि सब देवी देवता गिड़गिड़ाते हैं आपको देखकर, आपका नाम सुनकर, कोई भी सक्षम नहीं है आपके साथ लड़ाई करने के लिए। अगर देवी देवता भी डरते हैं आपसे, ये तो दो मनुष्य जंगलवासी हैं जो राम लक्ष्मण, ये क्या कर पाएंगे आपके सामने है, ऐसे बोला प्रहस्त। तो रावण का गर्व और बढ़ गया। उसके बाद और एक दुर्मुख नाम का एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि हे राजन आप चिंता मत करो, एक बंदर ही नहीं है, हम सब बंदरों को खत्म कर देंगे, वो आने दीजिए उनको लंका में, खत्म कर देंगे। उसके बाद दमष्टर एक वज्र दमष्टर नाम का और एक मंत्री था, उसने बोला कि अरे तुम क्या बंदर की बात करते हो, हमको बंदर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो दो लोग है ना राम लक्ष्मण, हम उनको खत्म करेंगे, ऐसे उसने बोला ऐसे। उसके बाद कुंभकर्ण के बेटा आया निकुंभ नाम का, वो बोला कि अरे आप लोग बड़ा बड़ा बात करते हो, आप लोग शांति से लेट जाओ महल के अंदर, मैं अकेला जाकर सबको खत्म कर दूंगा, ऐसे वो बोला उसने। ऐसे अलग अलग लोग अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इसको सुनकर रावण को बहुत अच्छा लगा, अच्छे मंत्रियों आप लोगों का बात सुनकर साहस आ गया हमको, और साहस आ गया, ठीक है यही मेरी अपेक्षा थी, आप लोगों ने हमारे अपेक्षा को पूरा कर दिया, सही है बहुत अच्छा है। इतने में विभीषण आया सामने, विभीषण ने बोला हे भैया मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, देखिए आपने जो सीता को लाया है इधर, ये सर्प को आपने गले में डाल लिया आपने, इसके बराबर है, सर्प कभी भी डसेगा आपको, इस तरह सीता के कारण आपका अधोगति होगा, आपका मृत्यु होगा, बड़ा खतरा है, क्योंकि पर स्त्री को अपहरण करना महापाप है शास्त्रों के अनुसार, और ये साधारण स्त्री नहीं है, ये भगवान की धर्मपत्नी है, आपने जो किया है बहुत बड़ा गलत है, आप जानते नहीं है राम और लक्ष्मण कौन है, वो परम सत्य है, वो साक्षात नारायण है। उन्होंने बोला कि जनस्थान में नासिक में 14,000 राक्षसों को एक ही रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर खत्म कर दिया उन्होंने करदूषण के साथ, 14,000 राक्षसों को। आप जरा सोच लीजिए क्या है, जंगलवासी हैं क्या ये लोग, कितने शक्तिशाली हैं, एक रामचंद्र उनके साथ लक्ष्मण भी है, उनके पास कोटि कोटि वानर हैं, आप इनके विरुद्ध काम मत करो, अगर तुम सीता को वापस लौटा दोगे माँ, ये रामचंद्र जी इतने महान है, महान पुरुष है कि तुमको माफ कर देंगे वो, तो ये मेरा विनती है आप ऐसे करो। इतने में इंद्रजीत सामने आया, वो बोला कि अरे आप क्यों इस तरह कायर हो, अगर आप लड़ाई नहीं कर सकते हो तो आप महल के अंदर चुप चुप जाओ, हम देख लेंगे राम लक्ष्मण और वानरों को, ऐसे बोला हो। तब विभीषण ने बोला अरे मूर्ख तुम तो बच्चे हो, तुम क्या जानते हो, तुमने कभी राम का सामना नहीं किया है तुमने, तो तब उन्होंने बोला कि तुम तुम्हारे पिताजी का मित्र नहीं हो, तुम शत्रु हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का विनाश काल को जल्दी लाने के लिए तुम इस तरह बात कर रहे हो, ऐसे डांटा उन्होंने। तो इसको देखकर बाकी मंत्री लोग और इंद्रजीत सब लोग कुपित हो गए विभीषण से। साथ साथ रावण ने भी बोला विभीषण को, हे विभीषण तुम्हारे से बात करके तुम मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हो, लेकिन बाकी मंत्री लोग मुझे सही ढंग से समझ रहे हैं और मेरी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए तुमको जो करना करो, इधर से निकल जाओ तुम इधर से, ऐसे उन्होंने भगा दिया। देखिए इससे हम लोग क्या समझते हैं, इधर अभी दो तरीके के लोग हैं, एक विभीषण सुबुद्धि है और बाकी मंत्री लोग कुबुद्धि है, तो हमको भी इस दुनिया में कुबुद्धि सुबुद्धि दोनों प्राप्त होता है, लेकिन हमको किसको चुनना चाहिए, सुबुद्धि को चुनना चाहिए। जैसे बलि महाराज थे, उनको शुक्राचार्य ने गलत उपदेश दिया, वामन देव सामने आ पहुंचे थे, वो दान मांग रहे थे 3 पांव, उस समय ही बलि महाराज को पता चल गया कि ये जो शुक्राचार्य हैं मुझे गलत मार्ग में लेके जा रहे हैं, हाइजा करके लेके जा रहे हैं हमको गलत मार्ग में, हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम भी कुबुद्धि, कुबुद्धि तब प्राप्त होता है जब बुद्धि मन और इंद्रियों की बात सुनता है, लेकिन सुबुद्धि तब प्राप्त होता है जब हमारी बुद्धि परमात्मा की और गुरु की बात सुनता है। तो हम लोग परमात्मा और गुरु इनकी बात सुनने से हमारे सुबुद्धि मजबूत हो जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा, और उस सुबुद्धि को के उस सुबुद्धि के साथ मैत्री बन जोड़कर हम लोग बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे इधर रावण के लिए भी सद्बुद्धि देने के लिए मंडोदरी थी और विभीषण थे, बात नहीं माना उनकी, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया उसका। आप देखेंगे धृतराष्ट्र के लिए भी गांधारी थी विदुर थे, बात नहीं माना उनकी, इसलिए उसको भी उसके सब के सब सौ के सौ पुत्र मर मिटे वो युद्ध भूमि में आप देखेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध आप देखेंगे अजामिल, अजामिल के भी कुबुद्धि उनको बिगाड़ दिया। अजामिल ने अपने माता पिता को भगा दिया और अपनी धर्म पत्नी को उनके मायका में भेज दिया, और अकेले जब हुआ तब उसने वो वेश्या को घर में लाकर एक नौकरानी बना लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ शादी भी कर लिया। शादी करके एक वेश्या का वेश्या गमन करके 10 पुत्र पैदा किया। ये सब कुबुद्धि का प्रदर्शन है, कितना कुबुद्धि हो गया, कितना अच्छे खानदान में जन्माता, ब्राह्मण परिवार में जन्माता, रोज अच्छे अच्छे कार्य करता था, पहले सत्कार्यों में लगता था। तो हम लोग इसलिए बहुत हमें चेतावनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर आप सत्कार्य में लगे हो, ऐसा मतलब नहीं कि ऑटोमेटिक ऐसा गाड़ी चलता रहेगा अंतिम सांस तक, ऐसा नहीं है। ये दुनिया इतना खतरनाक दुनिया है, जो इंसान धर्म के पथ में भी लगा है वो पथभ्रष्ट पद दलित होने की संभावना है उसको भी। ये अजामिल के इस लीला से पता चलता है, वो ब्राह्मण था, शुद्ध संपन्न था, सदाचारी पुरुष था और दृढ़ व्रत था। सुबह उठता था, नहाता था, धोता था, दंडवत प्रणाम करता था माता पिता को, शास्त्र पढ़ता था, श्लोक याद किया था, सब कर रहा था वो। लेकिन अचानक एक समय ऐसे कुछ गलत दृश्य देखने को मिला उसको, जंगल में एक स्त्री पुरुष आलिंगन करते हुए एक वेश्या को देखा, लेकिन वेश्या के संग करके वो उसका पूरा चरित्र बिगड़ गया उसका, उसको कुबुद्धि प्राप्त हुआ उसको। लेकिन बाद में नारायण का नाम पुकार कर जब विष्णु दूतों से उपदेश सुना, उस उपदेश को गंभीरता से लिया उसने, तब उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो उसको दो, इसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना, टग ऑफ वॉर क्या था, क्या या तो वेश्या के साथ रहो, घर में रहो, पाप कर्मों में लगते रहो, वो एक दिशा है। दूसरी दिशा क्या है, जो विष्णु दूतों ने बोला भगवान की भक्ति के संबंध में, उसको पकड़ लो तो उस दिशा में जाओ। उन्होंने क्या किया, सही दिशा में गया, हरिद्वार चले गए, गंगा में नहाते थे रोज, विष्णु के मंदिर में रहे, पूजा आराधना की, साधु महात्माओं के संग की, शास्त्र की पठन की, नाम का उच्चारण किया भगवान की, हैं इस तरह 12 साल ऐसे एक दिव्य जीवन जिया उसके, और पश्चाताप भी किया बहुत उसने, पश्चाताप करके सब तरह के पाप उसके अंदर वृत्तियां थी वो सब मिट गई पूरा, शुद्ध परिशुद्ध होकर उसको भगवत प्राप्ति हुई, वैकुंठ विमान आकर लेके गया उनको ऐसे। तो इनके प्रसंग में, अजामिल के प्रसंग में हम दोनों को देखने को मिलता है, उसको कुबुद्धि भी प्राप्त हुआ, सुबुद्धि प्राप्त हुआ। पहले कुबुद्धि को अपना कर गलत मार्ग में जा गया हो, विविध तरह के तकलीफों को झेलना पड़ा उसको, पाप कर्म भी किया उसने, अनेक लोगों को खून भी किया, मारा मारी किया, पैसा लूटा, सब किया उसने। लेकिन ये सब पाप कर्म अर्जित करने के कारण यम लोक से यमदूत आ गए थे उसको दंड देने के लिए। लेकिन भगवान का नाम लेकर यमपाश कट गया और उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ उसके बाद। तो हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने के पहले जान बूझ कर, नहीं तो अनजाने से अनेक पाप हुए हैं करोड़ों जन्मों में और इस जन्म में भी कुबुद्धि के कारण, क्योंकि कुबुद्धि मन और दूषित मन और इंद्रिय हमें गलत दिशा में लेके जाकर गलत कार्यों में लगा दिया था। लेकिन हम लोग कृष्ण भावनामृत में आकर प्रभुपाद के दिए हुए किताबों को पढ़कर समझकर हमारे चित्त को शुद्ध करके हम अभी इतना हद तक हम पहुंचे हैं। लेकिन इस हम जिस तरह पुरंजन की धर्म पत्नी है, इस तरह हर एक जीव के साथ एक बुद्धि दिया है भगवान ने, वो उनके पत्नी के बराबर है, जो सहायक है, जैसे मैनेजर होते हैं उनके एक सेक्रेटरी होते हैं, तो सेक्रेटरी का काम अलग होता है, मैनेजर का अलग होता है। तो मैनेजर डिसीजन लेता है, लेकिन सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो सब अरेंजमेंट करते हैं, सुविधा करते हैं उनके काम के लिए। इसी तरह आप देखेंगे पति पत्नी, एक पति होता है उसका कुछ काम होता है, पत्नी का दूसरा काम होता है ऐसे। लेकिन अगर पत्नी धार्मिक बन गई हो, धार्मिक होती है, साध्वी होती है, तो बड़ा भाग्य है पति का। तो वो घर घर भी एक सुंदर एक आध्यात्मिक वातावरण छा जाता है। तो इसलिए सही बुद्धि जीव को प्राप्त होना चाहिए। जैसे अजामिल को सही बुद्धि बाद में प्राप्त हुआ और परम कल्याण प्राप्त किया उसने ऐसे। तो ये श्लोक का मूल उद्देश्य है प्रभुपाद जी की तात्पर्य का, कि हम लोग इस दुनिया में आकर भटक रहे हैं, लेकिन हम जब तक बुद्धि को, बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, हम जब तक बुद्धि को मजबूत नहीं बनाएंगे शास्त्र पढ़कर, तब तक बुद्धि कमजोर रहेगा और मन और इंद्रियों की बात सुनेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक उदाहरण है, ये जो उपनिषदों में बताया गया है कि एक जो घोड़ा है, पांच घोड़े हैं, वो क्या है, हमारे शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये आंख नाक जिह्वा और कान और त्वच, ये पांच घोड़े हैं। और पांच घोड़ों को कंट्रोल में लाने के लिए लगाव, लगाव बोलते हैं उसको, लगाव क्या है, मन है। और जो ड्राइवर कौन है, बुद्धि है, बुद्धि ड्राइवर है। तो अगर बुद्धि मजबूत होगा तो वो लगाव को पकड़ लेगा हाथ में एकदम मजबूती से, है कि नहीं। तो पांच घोड़े कंट्रोल में रहेंगे वो। इस तरह हम भी हमारे पांच ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में रखना हो तो मन को संयम करना पड़ेगा। मन को संयम करने के लिए बुद्धि मजबूत होना चाहिए, तभी आत्मा आराम कर सकता है रथ में, क्योंकि घोड़े ठीक तरह से चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बुद्धि ड्राइवर एकदम कमजोर हो गया, वो पकड़ ही नहीं पाता, पतला हुआ है, पतला व्यक्ति है, उसके हाथ से बिछड़ गया सब रस्सियां, तो पांच के पांच घोड़े पांच दिशा में भागेंगे वो, तो पूरा क्या हो जाएगा, रथ उल्टा पुल्टा हो जाएगा वो। तो आत्मा जो अंदर बैठा है रथ में, उसको नुकसान होगा, उसको तकलीफ होगा उसको। इस तरह आजकल के जमाने में लोग देख रहे हैं कि उनका इंद्रिय उनके संयम में नहीं है, इसके कारण इंद्रिय सब दिशा में भाग रहे हैं, तो समाज में वर्णाश्रम नहीं है, ठीक तरह से शादी नहीं होता है, ठीक तरह से लोग विधि विधानों को पालन नहीं करते हैं, कुछ कुछ घरों में पूजा रूम भी नहीं है, इतना बिगड़ गए हैं लोग। लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जानवर ही हैं। आप देखेंगे जब ट्रेन में जाते हैं, कभी कभी स्लम्स होते हैं ना, झोपड़ी पट्टी, उधर भी गोपुरम होता है, मंदिर होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एनिमल प्लस रिलीजन इक्वल टू ह्यूमन, एनिमल प्लस रिलीजन इक्वल टू ह्यूमन। अगर मनुष्य भी जानवर जैसा ही है, लेकिन जब एक मंदिर मंदिर जाना, भगवान के सामने सर झुकना करता है, तो वो मनुष्य बनता है। लेकिन अगर कोई धर्म धार्मिक कार्यों को ही छोड़ दिया, पैसा अर्जन करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो ऐसे लोग जानवर से ज्यादा फर्क नहीं है उनका, उनके जीवन का। और जब अधार्मिक बनते जाएंगे, उनका भी तकलीफ बढ़ता जाएगा और दुनिया को भी बहुत तकलीफ देंगे ऐसे लोग। तो इसलिए इधर खास विषय यही है कि जिस तरह लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है हमेशा, उनके पाद संवादन करती है, इस तरह ही एक आदर्श पतिव्रता नारी को एक अगर पति अच्छी तरह रखता है, तो उनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय होता है। इसी तरह जीवात्मा जो है, उसके साथ जो उसकी पत्नी कौन है, उसका बुद्धि है, उसका बुद्धि। आप देखेंगे कि हमारा बुद्धि जितना एकाग्रत होता जाएगा भगवान की ओर, आप देखेंगे बुद्धि पर्यवतिष्ठते बोलते हैं ना, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। ये तीन श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, इस दुनिया में हमारे मन में अच्छी चीज के लिए अरुचि है और गलत चीज के लिए रुचि है, इसको राग द्वेष बोलते हैं। जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसके पीछे हमारा मन भागता है। और जो जैसे समोसा है, अच्छा है, अगर कोई छह समोसा खा लेगा तो मैदा में बनाया हुआ, कितना पेट बिगड़ जाएगा। जैसे पकौड़ा बेचते हैं, आप देखेंगे आवाज आता है और सुगंध भी आता है पकौड़ा का, है तो लगता है कि खाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, लेकिन खाने के बाद समस्या है ना। इस तरह दुनिया में जो चीज अच्छे नहीं है, वो हमको वो अच्छे लगते हैं हमको, वो उसको राग बोलते हैं। और द्वेष का मतलब है माला जपना सोलह माला, बैठ कर कर नहीं पाता इंसान, इधर भागता उधर भागता है, देखता कि कब माला पूरा हो जाएगा है? ऐसे है। तो अच्छी चीज के लिए रुचि नहीं है, गलत चीज के लिए रुचि है। वो बोलते हैं भगवान राग द्वेष विमुक्त इस्तु, इसको त्यागो तुम, तो मतलब क्या है, गलत चीज अच्छे लगने के बावजूद भी उनके पीछे मत भागो, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, मन बोलता है नहीं चाहिए उसको, फिर भी दो उसको, जैसे दवा कड़वा है फिर भी दवा पिलाओ आत्मा को, ऐसे बोलते हैं। विषयान इंद्रिय चरण, इंद्रियों को विषयों से दूर रखो, मन और विषयों को संयम करो, बुद्धि बुद्धि को लेकर ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं तुमको क्या प्राप्त होगा, इस तरह करोगे तो प्रसाद प्राप्त होगा भगवान की कृपा। और प्रसाद आप पूछेंगे ठीक है भगवान का प्रसाद कृपा प्राप्त होता है उससे क्या लाभ, वो बोलते हैं प्रसाद ए सर्व दुखा नाम हानि ही, तुम्हारे सब दुख मिट जाएगा बोलते हैं। प्रसन्न चेतशो ही आशु, तुम्हारे चित्त प्रसन्न हो जाएगा, तुम प्रसन्न चित्त वाले हो जाओगे, तुम कभी भी दुखित नहीं रहोगे। तुम देखिए ये रानी दुखित दुखित होकर नीचे लेटी थी, वो राजा भी दुखित हो गया, करेक्ट है ना। इस तरह अगर हमारा बुद्धि को भगवान की ओर हम एकाग्रत नहीं करेंगे, हम दुखित हो जाएंगे, आत्मा भी दुखित है और बुद्धि भी दुखित है। इसलिए भगवान बोलते हैं प्रसन्न चेतोषो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तुम्हारा बुद्धि शांत हो जाता है, एकाग्रत हो जाता है। और आगे बताते हैं भगवान नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अगर तुम कृष्ण भावना में नहीं लगाओगे बुद्धि को, क्या होगा, तुमको अशांति प्राप्त होगा। तो एक व्यक्ति को अगर अशांति है, अशांतस्य कुतः सुखम, तुमको सुख कैसे प्राप्त होगा। अगर तुमको सुख चाहिए शांति चाहिए तो बुद्धि को सीधा करो, भगवान की सेवा में लगाओ। और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष विमुक्त है, गलत चीजों के लिए राग, अच्छे चीजों के लिए द्वेष, ये दोनों को छोड़ो है? इस तरह छोड़कर इसका मतलब क्या है, मन और इंद्रिय जितने हद तक दूषित हैं वो हमेशा गलत और गंदे चीजों के पीछे भागेंगे, लेकिन भागने के लिए मत छोड़ो, बुद्धि को लेकर उनको पकड़ो, उनको शांत करो। और धीरे धीरे मल निकल जाएगा मन से जब हम नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल है। एक व्यक्ति के हृदय निर्मल होता है नाम श्रुति से, जितना मन निर्मल होगा वो शांत हो जाएगा। इंद्रिय भी जितने निर्मल होंगे वो गंदे चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, अच्छी चीज करने के लिए इच्छा करेंगे। आप देखेंगे भक्त लोग जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में, उनको भक्ति में सेवा में आनंद मिलता है, इस तरह शास्त्र पठन में आनंद मिलता है। तो यही बात है, मन और इंद्रिय जब तक दूषित हैं उनको विषयों के पीछे भागने मत दो, उनको शुद्ध करो हरिनाम जप के द्वारा और भक्ति कैंकर्यों के द्वारा, साथ साथ बुद्धि को मजबूत करो, कैसे, शास्त्र पठन के द्वारा बुद्धि को मजबूत करो, और बुद्धि के साथ मैत्री जोड़ो, बुद्धि को नकारो मत, और साथ साथ सद्बुद्धि को कुबुद्धि बनने मत दो, क्योंकि सद्बुद्धि को अगर शास्त्र का पोषण नहीं मिलेगा तो सद्बुद्धि क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और मन और इंद्रियों की बात सुनकर वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सद्बुद्धि को सद्बुद्धि रखो, शास्त्र पढ़कर और सद्बुद्धि का सहारा लेकर और सदगति प्राप्त करो। जैसे विभीषण ने किया, विभीषण का जन्म हुआ था उधर लंका में, सारे राक्षस ही राक्षस लोग थे, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने सही चीज को, रामचंद्र जी की भक्ति को पकड़कर रामचंद्र जी के पक्ष में चले गए। तो हनुमान ने भी संदेश दिया था भगवान को, विभीषण नाम का एक व्यक्ति मिला मुझे, वो आपका भक्त है, हुआ है उसका जन्म राक्षस परिवार में, लेकिन है वो आपका भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज जैसे, बलि महाराज जैसे। तो अगर राक्षस परिवार में जन्म लेकर भी कोई सुबुद्धि को प्राप्त करके भगवान की श्री चरणों को प्राप्त कर सकता है, तो हम लोगों को इतना दिव्य संघ प्राप्त हो रहा है, हम सही चीज को क्यों नहीं पकड़ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, और भक्तवृंद की।